ओम शांति। आज का ये स्टडी का अंतिम सेशन है ना, हमारी इस मौन तपस्या भक्ति का पढ़ाई का अंतिम सेशन है। फिर तो अनुभवों की लेन देन है। वैसे तो कल मुरली है, वो तो फिर भी रेगुलर हम सुनते हैं। तो आज हम सबके बीच में है आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी डॉक्टर सविता बहन जी। तो सविता बहन जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। आप देखो, ये जो हमारी भर्ती की क्लासेस हुई उसमें डॉक्टर्स कितने आए है ना, बहुत सारे डॉक्टर्स आए। डॉक्टर गुप्ता जी आए, डॉक्टर सचिन आए, डॉक्टर बनारसी भाई आए, और भी कोई आए, डॉक्टर श्रीमन साहू, वो कोलाबा का उन्होंने सुबह में लिया था। हाँ, और डॉक्टर सविता बहन है ना। देखो बाबा के कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने साइंस की स्टडी की हुई है। नहीं, अभी तो बहुत हैं, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैं हमारे पास, चाहे वो मेडिकल साइंटिस्ट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के फील्ड से हो, चाहे वो अन्य कोई फील्ड से हो, जिन्होंने साइलेंस को माना है। तो डॉक्टर सविता बहन, जिनसे आज हम बहुत ही सुंदर विषय, जो हमारी स्थिति को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट बात है, अक्सर बाबा उसके बारे में मुरलियों में कहते हैं, और अक्सर उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, और वो विषय है इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। अक्सर इच्छाएं जागृत हो जाती है, ज्ञान में आने के बाद, समर्पित होने के बाद दूसरी प्रकार की हो जाती है इच्छाएं, ना, ऐसा हो जाता है। तो कैसे अपनी ये स्थिति बनाए ताकि उड़ना आसान हो जाए ना, इस देह से निकलना आसान हो जाए, अशरीरी विदेही बनना आसान हो जाए। तो आज इस विषय में हम डॉक्टर सविता बहन जी से सुनेंगे। आप बहुत सिंपल हैं और हम्बल भी हैं। ऑलवेज मैंने कभी नहीं उनके चेहरे पर कोई लाइनें देखी, जैसे होता है ना ऐसी वाली लाइनें आ जाती है ना कभी, नेवर, आई हैव नेवर सीन। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, चाहे कोई बात आ गई है, चाहे कुछ भी है, बातें तो आती है ना सबके पास अपनी अपनी प्रकार की। आई हैव नेवर सीन कि कभी उनके चेहरे पर कोई इस प्रकार की बात हो। आप बात भी करते हैं ना, हमेशा मुस्कुराते हुए करते हैं और हल्का कर देते हैं, सामने वाले को भी हल्का कर देते हैं। मुझे याद है एक बार आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, आप पहचान नहीं सकते होंगे उस घड़ी, अगर आप देखते, अभी कुछ भी नहीं है। इतनी जल्दी उन्होंने उस परीक्षा को हंसते हंसते पार कर लिया, पता ही नहीं चला। तो ये है ज्ञान और योग धारणाओं को जीवन में अप्लाई करना। जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा जीवन परिस्थितियों से पार होता जाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। बड़ी परिस्थिति आती है, जैसे बड़ा एग्जाम आता है, बड़ी परीक्षा पास करते हैं तो बड़े बनते जाते हैं। आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से MBBS किया और 1989 में आपने MBBS कंप्लीट किया। उसके बाद आपने राजस्थान की कुछ सिटीज में और अन्य जगहों पर अपना ये मेडिकली प्रोफेशन में थे आप। 91 में आप माउंट अबू, जो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है, वहां आपने अपनी ऑनररी सेवाएं देनी प्रारंभ की। 2000 तक आप ग्लोबल हॉस्पिटल में थे, सेवाएं देते थे। तत्पश्चात आपने अपना जीवन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से व्यतीत करना प्रारंभ किया और आप विद्यालय की हर प्रकार की सेवाओं में, जो आपको कहा जाए, जैसे कहा जाए, आप वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज आप जो हमारे जितने भी कैंपसेस हैं, ज्ञान सरोवर, शांतिवन और पांडव भवन, हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सभी कार्यक्रमों में, चाहे वो विंग्स के हो, चाहे वो भट्टियां हो, चाहे वो अन्य कोई कार्यक्रम हो, जहां भी आपको कहा जाए आप सदा तत्पर रहते हैं उस सेवा के लिए। तो आप ऐसे अपने अध्ययन से, मनन चिंतन से ना, एफर्ट करके, पुरुषार्थ करके आप इस प्रकार की सेवाओं में अपने आप को सदा इन्वॉल्व रखते हैं, ऑलवेज बिजी शीज। और दादी प्रकाशमणि, हमारी बड़ी दादी जिनको हम कहते थे, उनके आप फैमिली फिजिशियन भी थे, मतलब उनके पर्सनल फिजिशियन थे आप। तो आप सोच सकते हैं, दादियों के नजदीक तो हर कोई नहीं होता ना, तो आप दादी के बहुत नजदीक थे, अभी भी दादियों के नजदीक हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस विषय के बारे में आपके अनुभव युक्त विचार हमसे शेयर करें। आदरणीय डॉक्टर सविता बहन जी।
ओम शांति, ओम शांति। ये आप सभी का लास्ट क्लास है ना, बोला तो अभी तक तो सबकी बैटरी फुल चार्ज हो गई होगी। हाँ, हो गई है बैटरी चार्ज, और अब वो पूरा साल चलेगी। हाँ, तो विषय ही है हमारा इच्छा मात्रम अविद्या। तो जब हम बाबा के पास आए तो हमने जैसे ही बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, अभी गीत सुन रहे थे ना कि आप बाबा सदा साथ हैं तो और क्या चाहिए। तो जो मन से आवाज निकली, जिसे कहते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले उस परमेश्वर की, वो मिल गया तो फिर और क्या चाहिए, ऐसे कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि पाना था सो पा लिया। जो ब्रह्मा बाबा को भी अनुभव हुआ, जब बाबा को साक्षात्कार हुए और वो अनुभव हुआ, तो बाबा ने अपने परिवार को क्या लिखा, अल्फ को अल्लाह मिला बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ की हुआ रेल का राही। तो बाबा को वो जो हीरे थे वो पत्थर लगने लगे, इतना बाबा का रॉयल बिजनेस था, इतना ऊंचा बिजनेस था। लेकिन अब बाबा को वो बिजनेस में रुचि नहीं रही और पैसे का भी हिसाब किताब ढंग से नहीं किया बाबा ने, तुरंत वहां से सीधा हैदराबाद आ गए। तो हम सभी के जीवन का भी अनुभव कुछ इस तरह का है कि जब हम बाबा के पास आते हैं और ईश्वरीय उस ईश्वरीय सुख का अनुभव करते हैं, जो आत्मिक सुख है, अतिंद्रिय सुख है, तो उस सुख के आगे जो भौतिक सुख है इस दुनिया के, जो भौतिक उपलब्धियां हैं, जो इच्छाएं हैं, वो हमें इतना आकर्षित नहीं करते हैं, वो सहज ही छूटने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति को ऊंची प्राप्ति हो जाती है तो जो कम प्राप्ति है उसकी तरफ बुद्धि जाएगी क्या? जाएगी। आपके पास कार है तो स्कूटर की तरफ बुद्धि जाएगी, क्योंकि उससे ऊंची प्राप्ति हमारे पास है, तो उससे श्रेष्ठ सुख हमें मिल गया, जो दुनिया के इंद्रिय सुख हैं उन सुखों से बेहतर सुख जब हमें अनुभव होता है, तो उस सुख के आगे हमें और सब इच्छाएं फीकी लगती हैं और अपने आप ही पीछा छोड़ने लगती। मैं अपने जीवन का अनुभव सुनाती हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी और मैं मुझे ये ज्ञान मिला, तो नेचुरली जो मेडिकल पढ़ते हैं और फिर संग भी ऐसा ही होता है, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन जब मैं पहली बार बाबा से मिली, मैंने कोर्स किया कुछ ही महीने में, मेरे को बहन बाबा से मिलाने ले आई थी, और बाबा से मिलन का जो मेरा अनुभव था वो इतना पावरफुल था, यानी जो अनुभव था वो मेरी लाइफ में यू टर्न लाने वाला था। उस समय तक मैंने कभी नहीं सोचा था सपने में भी कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। फिर बाद में आने के बाद ज्ञान योग की तरफ थोड़ा ध्यान दिया, मुरली सुनना शुरू किया। उसके पहले कभी नहीं सुनते थे, पढ़ाई में बिजी रहते थे। ठीक है, शिव बाबा है, उनको याद करना है। और फिर उसके बाद ये जो निश्चय किया कि ब्रह्मा कुमारी बनना है, फिर कितनी ही बातें आई सामने, क्योंकि आकर्षण तो है ही ना आज की इस दुनिया में, ऐसे तो है नहीं कि नहीं है। लेकिन कभी अंश मात्र भी बुद्धि गई हो, मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे ये तो सन्यासी है यानी उनको पता था कि ये हमारे साथ रेस्टोरेंट में खाने नहीं जाएगी, ये हमारे साथ घूमने नहीं जाएगी, अगर इसको टाइम मिलेगा तो ये सीधा सेंटर जाएगी, इसको जो चाहिए वो वहीं से मिलता है। तो क्यों बुद्धि नहीं जाती थी? क्योंकि जो बाबा का सुख था वो अनुभव हो गया। और फिर जब हमने पढ़ाई पूरी की, डिग्री ली, सीधा मैं सेंटर पर रहने आ गई। हालांकि मेरे पिताजी की उस समय सहमति नहीं थी, तो मैं डिग्री लेने के बहाने, क्योंकि जो पढ़ लिख जाते हैं उनके लिए बाहर निकलना कोई मुश्किल नहीं होता, और वैसे भी हॉस्टल में रहते थे तो इंडिपेंडेंट लाइफ रह लिया इतने साल, तो डिग्री लेने के बहाने तो घर से निकले ही, और फिर उसके बाद घर गई नहीं वापस। वो तो ढूंढते रहे पहले कहाँ गई कहाँ गई, पता तो था कि वहां ही जाएगी, लेकिन कौन से सेंटर गई ये भी नहीं पता चला उनको। तो मैं सेंटर में आई, तो जो मैं उदयपुर से पढ़ी थी, तो हमारी जो उदयपुर की बहन थी उसने कहा मैं आपको नहीं रखूंगी, उदयपुर मेडिकल कॉलेज से पढ़ी मैं, तो उसने कहा मैं आपको नहीं रखूंगी क्योंकि आपके पिताजी मुझे गाली देने आएंगे, मैं नहीं सुन सकती तो आप देखो आपको कहाँ रहना है। तो राजस्थान में ही डूंगरपुर एक जगह है, तो वहां हमारी प्राइमरी पोस्टिंग हो सकती थी जो लेनी होती है। उस समय वो डिस्ट्रिक्ट नहीं था, अभी डिस्ट्रिक्ट बन गया, वो एक टाउन था, और एक टाउन की पोस्टिंग करनी पड़ती पीएचसी जब हम इंटर्नशिप करते हैं। तो मैंने फिर वहां की पोस्टिंग ले ली और वहां चली गई। तो वहां गई तो जो सेंटर था बहुत छोटा था, एक छोटा सा कमरा था क्लास का जिसमें 3-4 स्टूडेंट आते थे रोज, एक रहने का कमरा था छोटा सा, एक छोटा सा किचन था, बस इतना ही। तो मतलब कभी संकल्प नहीं आया कि डॉक्टर बनने के बाद मैं कहाँ रह रही हूँ, या कोई ऐसी इच्छा पैदा हुई हो। और फिर उसके बाद जब हम पूरा इंटर्नशिप करके और सेंटर पे रहने लगे, तो मैं इंदौर गई थी बाद में, तो वहां जो सर्कुलर निकला ग्लोबल हॉस्पिटल का, और ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए फिर यहाँ आना हुआ। लेकिन तब तक हॉस्पिटल नहीं बना था, तो हॉस्पिटल की वेट में हमने यहाँ डिस्पेंसरी में सेवा की तब तक। तो यहाँ जो रहने का कमरा मिला उसमें हम 15 कुमारियां रहते थे, और पट पे सोते थे, है ना, जमीन पे सोते थे, खटिया भी नहीं थी। और कितने महीने तक हम ऐसे रहे, लेकिन कभी वो फीलिंग नहीं आई कि हम पट पे सो रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। हाँ, अच्छी तरह कम से कम रहने को तो मिले, इतनी सेवा कर रहे हैं भगवान के घर में। और सेवा सीजन यही चलती थी मधुबन में, और तो कोई कैंपस था ही नहीं, सभी भाई बहने यहाँ आते थे, तो जो डिस्पेंसरी की भी सेवा थी वो फुल थी, सुबह से लेकर रात तक नॉन स्टॉप माना कोई ना कोई पेशेंट होता ही था। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल बना, तो हॉस्पिटल बनने के बाद सारे स्टाफ को वहां शिफ्ट होना था, तो जो डॉक्टर्स थे उन सबको, जो भी डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया था उनको सिंगल सिंगल रूम, सब जो भी सुविधाएं होनी चाहिए उस हिसाब से उनको दिया गया। मुझे दादी जी ने कहा कि आप यहाँ डिस्पेंसरी में सेवा कर रही हो 1-2 साल से, तो यहाँ के भाई बहनों को आपकी जरूरत होगी, तो आपको फुल टाइम हॉस्पिटल नहीं जाना है, सवेरे आप हॉस्पिटल जाओ और शाम को यहाँ डिस्पेंसरी में बैठना, तो आपको यहाँ ही रहना है। तो उस कमरे में तब तक तो खटिया लग चुकी थी, लेकिन हम 7 लोग रहते थे उस कमरे में, और मैं इतनी खुश हुई उसके बावजूद भी, ऐसे नहीं कि मुझे हॉस्पिटल में इतनी सुविधाओं वाले स्थान पर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, वहां मुझे रहना चाहिए, बल्कि मुझे लगा कि जैसे बाबा ने तो मेरी दिल ही पूरी कर दी, कि मैं सोचती थी मैं दादियों के साथ यहाँ रहती हूँ, अब मुझे हॉस्पिटल जाकर रहना पड़ेगा, दादी ने तो आगे से ही मुझे कह दिया कि तुम्हें यहाँ रहना है। तो भले ही हम 7 लोगों के बीच में रहे, काफी सालों तक ऐसे चला, फिर 5 लोगों के बीच में रहे, लेकिन जो सुख मिल रहा था, जो रूहानी सुख था जिसे हम कहेंगे, उस सुख के आगे ये सब जो छोटी मोटी हमारी सांसारिक इच्छाएं या कहें भौतिक इच्छाएं हैं, वो कुछ भी नहीं, माना उसने कोई हमें संकल्प नहीं उत्पन्न होने दिया। तो आप सब भी अपने जीवन में ऐसा ही अनुभव करते होंगे कि जब हम बाबा के बने तो दुनिया जिस दिशा में दौड़ती है, हम हमारी दिशा बदल जाती है। हमारी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का आधार है सर्व प्राप्तियां। जब व्यक्ति भरपूर होता है तो उसे इच्छा ही नहीं होती। जैसे कहते हैं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, या बाबा ऐसे भी कहते हैं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। तो देवताएं तो सर्व प्राप्ति संपन्न है ही, उनको तो इच्छा ही नहीं होगी क्योंकि इतने भरपूर हैं। जैसे मानो हमने भर पेट खा लिया है और उसके बाद खाने की इच्छा होती है, जो भूखा होगा उसको ही खाने की इच्छा होगी, जिसका पेट भरा होगा उसको खाने की इच्छा नहीं होगी। अगर प्यास लगी है तो ही पीने की इच्छा होगी, अगर प्यास नहीं है तो पानी पीने की इच्छा भी हमें नहीं होगी। तो बाबा हमें सर्व प्राप्ति संपन्न बना देते हैं और इसीलिए हमारी वो स्थिति बनती है जो इच्छा मात्रम अविद्या कहता है बाबा। तो सर्व प्राप्ति संपन्न माना स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्राप्तियां हमें बाबा के द्वारा होती हैं। भक्ति में भी हम देखते हैं, भक्ति में जो भक्त हुए हैं उन्होंने भी भगवान से, जो परम सच्चे भक्त जिन्हें कहेंगे या परम भक्त जो हुए हैं, उन्होंने भी भगवान से, हालांकि डायरेक्ट भगवान से उनका कनेक्शन नहीं था, भक्ति तो इनडायरेक्ट ही है, किसी भी देवता इष्ट के माध्यम से ही वो भक्ति करते हैं, लेकिन भक्तों में भी ये गुण रहा कि भगवान मिलने के बाद, भगवान में उनकी लगन लगने के बाद सांसारिक इच्छाओं को उन्होंने महत्व नहीं दिया। संत रैदास की एक कथा आती है कि वो जूते सिलाई का काम करते थे, मोची का काम करते थे, और सारा दिन उनका वो भक्ति के भजन गाते हुए वो जूते पहनते रहते थे, लेकिन बहुत गरीब थे, बहुत मुश्किल से अपने परिवार का वो गुजारा चलाते थे उससे, लेकिन फिर भी खुश रहते थे। तो एक बार एक साधु आए उनके पास, तो उन्होंने जब उनकी दशा देखी तो उनको बहुत रहम आया उनके ऊपर, कहा कि इतनी महिमा इनके सुनी है हमने और ये कैसा फकीरी का जीवन जीते हैं। तो उसके पास वो पारस मणि थी, जिसके लिए कहते हैं कि पारस मणि से लोहा सोना हो जाता है। तो उसने कहा कि मैं तुमको पारस मणि देता हूँ, थोड़े दिन के लिए तुम रखो और तुमको जितना सोना बनाना है उससे बना लो, फिर मैं तुमसे वो पारस मणि ले जाऊंगा। तो संत रैदास ने कहा कि मुझे पारस मणि नहीं चाहिए, मुझे जितना मिला है भगवान से उसमें मैं खुश हूं, आप अपनी पारस मणि ले जाओ, अपने पास ही रखो। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे, मैं देख रहा हूं ना तुम्हारी हालत क्या है। तो जबरदस्ती भी उसने पारस मणि देने की कोशिश की उनको, तो उन्हें कहा अच्छा तुमको देने की ही इच्छा है तो ये जो छज्जा है इस पर रख दो, मैं को जब जरूरत होगी तब ले लूंगा। तो उसने वो छज्जे पे रख दी। फिर कुछ दिनों के बाद वो साधु ने सोचा कि अब तो उन्होंने सोना बना लिया होगा, अब तो उनकी हालत ठीक हो गई होगी, अब मोची का काम भी वो रैदास नहीं करते होंगे, जरूरत ही नहीं है मोची का काम करने की अब। तो कहा चलो अब वापस ले लेते हैं जा करके। तो वो वापस आए तो देखा वही हाल है, वही झोपड़ी है, वही जूते सिलाई का काम हो रहा है, मोची का काम हो रहा है। तो उसने कहा क्या हुआ उस पारस मणि का, तो उसने कहा कि तुम जहां रख के गए हो वहीं पड़ी है, मैं तो भूल ही गया कि तुम पारस मणि भी रख के गए थे यहां पर और मुझे सचमुच वो नहीं चाहिए। तो अपने जीवन से वो संतुष्ट थे, जो कबीर दास जी ने भी कहा है ना, चाह गई चिंता मिथि मनवा बेपरवाह, चाहिए वही सहनशाह, ऐसे है ना, जिसको कछु ना चाहिए सोई सहनशाह। तो जो इच्छाएं हैं हमारे जीवन में, वो इसका उन्होंने इस तरह से वर्णन किया कि जो इच्छाएं हैं उनके कारण हमें चिंताएं होती हैं, मन अशांत होता है, मन परेशान होता है, क्योंकि इच्छा पूरी करने की हम किसी भी तरह से कोशिश करते हैं और अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो कई बार हम गलत तरीके भी अपनाने लगते हैं, फिर हम स्वार्थी भी हो जाते हैं और उसके कारण कई बार हमसे विकर्म भी हो जाते हैं और विकर्म होंगे तो फिर पाप कर्मों का बोझ आत्मा पर होगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि जितना हम सर्व प्राप्ति संपन्न के नशे में रहेंगे, जो बाबा के द्वारा हमें सर्व खजाने मिले हैं, उतना ही ये हद की इच्छाएं हमें आकर्षित नहीं करेंगी। तो दुनिया में जो स्थूल प्राप्तियां होती हैं वो हैं तन मन धन और संबंध, और सूक्ष्म प्राप्तियां होती हैं नाम मान शान की प्राप्ति होती है, ज्यादा इच्छाएं इसकी होती हैं। अब तन की प्राप्ति में कितने ही तरह की तन की इच्छाएं हो सकती हैं मनुष्य के अंदर। आज की दुनिया में हम देखते हैं तन के पीछे लोग क्या क्या करते हैं, कितना फैशन दिखावा देह अभिमान है आज की दुनिया में। फिर स्वास्थ्य को लेकर के भी कितनी कॉन्शियसनेस है, कितनी तरह की पैथीज चलती हैं, कितने तरह के कार्यक्रम चलते हैं, फिटनेस के प्रोग्राम जो हम कहते हैं, हाँ एक्सरसाइजेस कहें, लेकिन हमारी फिटनेस का राज क्या है? हमारी फिटनेस का राज क्या है? बाबा ने कहा कि अगर हमारा मन स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है, तो तन भी स्वस्थ है। खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं, बाबा हमें कहते हैं। तो हमें बेफिक्र बादशाह बनाया बाबा ने। आज की दुनिया की 70% बीमारियां चिंता फिक्र से होती हैं, टेंशन से होती हैं, और बाबा से योग लगा करके हम चिंता फिकर टेंशन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम सब बाबा को दे देते हैं। हमने ये तन किसको दिया है? ये तन मन धन किसका है? कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा। भक्ति में तो सिर्फ गाते आए थे, लेकिन अभी तो वास्तव में हमने तन मन धन सब बाबा को दिया। तो अब ये जो तन है वो भी मेरा नहीं है, ये बाबा की अमानत मेरे पास है और उस बाबा की अमानत को मुझे संभालना है। और ये तन बहुत वैल्यूबल भी है इस संगम युग पर, जैसा भी तन है हमारा, लेकिन बहुत वैल्यूबल है क्योंकि इस तन के द्वारा ही हम पुरुषार्थ करके जन्म जन्मांतर का भाग्य बना रहे हैं। तो इस रीति से इस तन के प्रति हमारी जो भावना होनी चाहिए वो अगर पॉजिटिव रहती है और अगर हमारी आत्मा स्वस्थ है, तो जो भी रोग भी आता है, कोई आता भी है शारीरिक हिसाब किताब के कारण हमें सब चुकतू करने हैं, कोई रोग आ भी जाता है, तो बाबा कहता है वो सूली से कांटा हो जाता है, यानी उसका दुख हम अनुभव नहीं करते। वो जो दुख की फीलिंग है उससे आत्मा परे रहती है। फिर मन मन मना भाव है, आज बाबा की याद में मन लगा हुआ है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा मन चंचल है, मेरा मन भटक जाता है, मेरा मन तो बाबा की याद में लगता नहीं, कैसे मैं लगाऊं, ये प्रश्न है। मन भी किसका है? मन भी मेरा है या बाबा का है? मन भी तेरा कहा ना, तो जब मन मेरा नहीं है तो ये प्रश्न उठने की बात ही नहीं है, मन तो है ही बाबा का। तो मन में शांति आ गई। फिर धन, आज दुनिया धन के पीछे दौड़ रही है, लेकिन हम बाबा के बच्चे, हमारी दिशा जैसे मैंने कहा बिल्कुल बदल जाती है। हम दुनिया वालों जैसे अब धन कमाने के पीछे अपना समय और शक्ति नहीं लगाते, और ही बल्कि उसे समेटने की कोशिश करते हैं कि हमें अविनाशी कमाई करनी है, ये कमाई हमारे साथ जाने वाली है, ये कमाई तो विनाशी है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कई बार मूल्यों में कि अगर इतना हमारे पास है कि आराम से हमारा रहना खाना, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, तो फिर बहुत ज्यादा हमें धन कमाने की प्रवृत्ति में नहीं जाना है। ये इच्छा मुझे नहीं रखनी है। लखपति तो आज के जमाने में सभी होते हैं कि मैं करोड़पति हो जाऊं, तो मेरे पास बहुत अधिक धन होगा तो हम बाबा की सेवा में बहुत धन लगाएंगे, तो हमारा भाग्य भी उसी अनुसार बनेगा, क्या कहेंगे, ऐसी इच्छा होती है। तो बाबा कहता है अगर वो करोड़ कमाने में जाएंगे तो फिर क्या होगा, माया, धन के साथ साथ फिर माया भी आती है, तो बाबा के रहेंगे ही नहीं, माया खींच कर ले जाएगी। तो इसलिए बाबा गरीब निवास हैं। तो अगर हमारी सच्चे दिल है सेवा में, तो बाबा कहता है अगर मैंने 10 भी लगाया तो वो 10 कितना हो जाता है, 10,000 हो जाता है। मतलब वो पैसा जो है वो कम नहीं, लेकिन दिल से अगर हमने सेवा की तो वो समर्थ होकर जमा होता है, मल्टीप्लाई होकर के जमा होता है। एक साहूकार का 10,000 और एक गरीब का 10 रुपया, बाबा कहता है बराबर है। तो अगर है हमारे पास तो हम करें, और अगर नहीं है तो हम केवल इसके लिए कि मुझे सेवा करनी है इसीलिए हम धन कमाने के पीछे जा रहे हैं, अपना समय शक्तियां हम उसमें लगा रहे हैं, तो हम जो हमें बाबा की ये अविनाशी पढ़ाई की कमाई करनी चाहिए, जिसे बाबा कहता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है, और ये ज्ञान धन हमें आज ही धनवान नहीं बनाता। एक एक रतन की वैल्यू कितनी है, लाखों रुपए के बराबर है, बाबा कहते हैं ना, तो वो हमें जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदम पति बनाने वाला है। तो ये रतन हमें जमा करने हैं, ये कमाई हमें ज्यादा से ज्यादा जमा करनी है। फिर दुनिया भौतिक चीजों के पीछे लोभ जो होता है, धन का जो लोभ होता है, उसमें फिर देखने खाने का, पहनने का, ओढ़ने का, या कोई भी जो भी साधन सुख सुविधा के साधन हम धन से लाते हैं उनका, ये रॉयल माया कई बार ब्राह्मणों को भी आती है। भले धन कमाने के पीछे अब बहुत नहीं जाते, लेकिन जो इंद्रियों के छोटे छोटे आकर्षण हैं, इनमें कई बार इसको समझते ही नहीं है, सोचते ही तो नेचुरल है। अब हम समाज में रहते हैं तो ऐसा तो हमारा पहनना ओढ़ना होना ही चाहिए, कुछ तो स्टैंडर्ड हमें अपना मेंटेन करना है। फिर खाने पीने का, खाना पीना इस तरह का तो होना ही चाहिए, बाहर तो नहीं खाते हैं तो बाबा के भोग में बहने इसलिए वैरायटी बना करके बाबा के बच्चों को खिलाती हैं कि उनको ये इच्छा ना हो कि बाहर का हमने खाना छोड़ दिया तो हम ये डिशेस अब नहीं खाते हैं या कभी नहीं खा पाएंगे। पर उसमें भी मानो अगर हमें कुछ कंट्रोल करना है, किसी को कोई बीमारी है, मानो डायबिटीज हो गई या ब्लड प्रेशर हो गया, तो हार्ट की बीमारी है, तो डॉक्टर कहेंगे भाई तला हुआ नहीं खाना, आपको मीठा नहीं खाना। हाँ, लेकिन हम सोचते हैं कि हफ्ते में एक बार ही तो आता है गुरुवार, एक बार बहन जी ने मीठा खिलाया, एक बार खा लिया, तो क्या बाबा का भोग ही तो खाया। तो भोग की इच्छा तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे। एक बार ऐसे ही कहानी सुनाते हैं, एक बुजुर्ग भाई थे, वो अपने बहु बेटे के साथ रहते थे, लेकिन साधारण परिवार था और उनको पेंशन भी नहीं मिलती थी, तो बहु बेटे ऐसे खाने पीने का सब चीजों का ध्यान रखते थे पर उनको पैसा नहीं देते थे। तो एक बार वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने हलवाई की दुकान देखी और गुलाब जामुन दिखे उनको, तो बड़ी इच्छा हुई, बहुत दिनों से गुलाब जामुन नहीं खाए थे, गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, तो पूछा, क्योंकि पैसा तो नहीं था हाथ में, तो उससे पूछा कितने का है गुलाब जामुन, तो बोला 2 रुपए का एक है। सोचा कैसे खाएं गुलाब जामुन, तो आगे गए तो वहां कोई मकान का काम चल रहा था, तो ऐसे ही उनके मन में संकल्प आया कि पूछते हैं ठेकेदार से कुछ थोड़ा काम करके, अगर 8-10 रुपए मिल जाए तो गुलाब जामुन खाएंगे। पूछा तो उसने कहा हाँ दे सकता हूँ, एक दिहाड़ी का 20 रुपया मिलेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं बहुत भारी काम तो नहीं कर सकता हूँ, मैं वृद्ध हूँ, लेकिन कोई छोटा मोटा काम आप मुझे बताएंगे तो मैं कर देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, ये चुनाई हो रही है, ईंटें उठा के ला करके इनको दो। तो उसने शुरू किया देना, आधा दिन हो गया, पर बूढ़ा था तो थक गया, वो जल्दी थक गया, फिर उससे नहीं हो रहा था, तो उसने कहा कि अब मुझसे नहीं होता है, जितना भी हुआ मेरा हिसाब कर दो। तो उसने देखा आधा दिन हुआ है, 10 रुपए दे दिए उसको। वहां गया दुकान पे, 10 रुपए के 4 गुलाब जामुन मिल गए। गुलाब जामुन लिए और फिर उसने कुछ मन में सोचा और घर के पास ही एक छोटी नदी बहती थी, वहां जाके नदी के किनारे बैठ गया। सोचा उसका आराम से सुख लेकर के खाएंगे अच्छी तरह से, इतनी मेहनत से गुलाब जामुन हाथ में आए हैं। फिर उसने एक गुलाब जामुन हाथ में लिया, देखा उसको और उसको नदी में फेंका और कहा कि गुलाब जामुन खाएगा तो मुझे हंसी आ रही, गुलाब जामुन खाएगा तो ईंट उठाएगा। फिर दूसरा गुलाब जामुन हाथ में उठाया, फिर उसको फेंका, फिर वही उसने दोहराया, गुलाब जामुन खाएगा तो उठाएगा, और चारों गुलाब जामुन उसने एक एक करके ये कह के फेंक दिए। तो कहने का भाव क्या है कि जिन चीजों की हमें अपने जीवन में आवश्यकता नहीं है, माना जिनके बिना हमारा काम चल सकता है, वो इच्छाएं हमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी जो भी बाबा हमेशा कहता है, 36 प्रकार का भोजन भी आपको मिलता है तो खाओ, मना नहीं है, बाबा की याद में खाओ, ब्रह्मा भोजन दृष्टि दे करके उसे खाओ। लेकिन अगर सूखी रोटी और नमक भी मिलता है खाने के लिए, सूखी रोटी दाल, आज के जमाने में तो दाल भी बहुत महंगी है, तो अगर सूखी रोटी नमक भी मिल जाता है खाने के लिए तो भी उतना ही प्यार से खाओ। अगर अच्छा कपड़ा मिलता है पहनने को तो भले पहनो, लेकिन अगर चट्टियों वाला कपड़ा भी आ जाए पहनने के लिए सामने, तो फिर दोनों में फर्क महसूस नहीं होना चाहिए, हर स्थिति में समान। और बाबा ने यही ट्रेनिंग जो बेकरी पार्ट में थे, बाबा के यज्ञ में थे, बाबा के बच्चे थे उस समय, बाबा के बच्चों को दी। बाबा ने सब 15 दिन तक, कहते हैं यज्ञ में कुछ खाने के लिए नहीं था, वो छाछ और बाजरे का डोडा खिलाया सबको, पेशेंट्स भी थे, सभी ने वो खाया। और नाश्ते के लिए बाबा कई बार सिर्फ पहाड़ी पर ले जाते थे, यहाँ जंगलों में, और यहाँ करौंदे होते हैं, आम होते हैं, बाबा वही नाश्ता कराते थे उनको। तो कभी भी किसी को महसूस नहीं हुआ। तो बाबा नहीं कहते, विनाश के समय ऐसा हो सकता है, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, आप जैसे मानो कर्फ्यू लग जाता है तो सब खाने पीने की चीजें मिलना बंद हो जाती हैं, तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो सिर्फ बाबा की याद में ही, बाबा वतन में ही हमें शुभ रस पिला देंगे, वतन में ही हमें ऐसा अनुभव करा देंगे। तो बाबा से अगर मन बुद्धि लगी हुई है तो सदा ही हम उतृप्त अनुभव करेंगे। और बहुत थोड़ा खाने में ही हमारा जैसे पेट भर गया या हम भरपूर अनुभव करेंगे। हम दादियों को देखते थे, दादियों के समीप रहे हैं तो दादियों का खाना कितना कम, सिर्फ दादी एक रोटी खाती थी, और अगर कोई लाया भी है प्यार से, इतनी थोलियां दादी के सामने सब भाई बहने ला करके देते हैं तो सिर्फ भोग लगाएगी, इतना सा उसमें लेकर के कि हाँ ये इतनी भावना से प्यार से लेकर आए हैं तो दादी ने खाया तो सही, तो इतना सा भोग लगाएगी। और हमने ये भी देखा कि दादी के सामने कितनी चीजें लोग ऑफर करते थे, यज्ञ का केंद्र थी दादी, तो जो भी जो कुछ लाता था वो दादी को देना चाहता था। तो कितनी ही वैल्यूबल चीजें भी दादी को लाकर दी जाती थी, और उनमें से कोई भी दादी अपने पर्सनल यूज के लिए रख सकती थी, उनको कौन मना करेगा, कोई कहेगा कि आप मत रखो, अगर दादी को पसंद आती है कि हाँ ये चीज मुझे अच्छी लगी ये मेरे लिए रख दो, है ना, और बाकी सब यज्ञ में दे दो। आज तक मना एक बार भी हमने नहीं देखा कि दादी ने कभी कहा हो कि ये मेरे लिए रख दो, आया और कभी आसक्ति नहीं गई, कभी दृष्टि नहीं गई कि ये मेरा है, बाबा का है, बाबा के यज्ञ में ही जाएगा। और दादी जो रुमाल भी यूज करती थी ना, लास्ट तक भी वही उसी तरह का रुमाल, कभी रुमाल भी चेंज नहीं किया, जो चप्पल पहनती थी यहाँ यज्ञ से बनी हुई चप्पल पहनती थी दादी, अंत तक वही चप्पल, उसी तरह की चप्पल ही पहनती थी, साड़ी की भी वही सूती साड़ी, माना जीवन भर दादी ने वही कलफ लगी हुई सूती साड़ी पहनी, कभी वृत्ति किसी चीज में गई हो, इतनी संपन्नता है ना, कोई कमी नहीं बाबा के घर में जो भी चीजें आती हैं, लेकिन कभी बुद्धि जाए किसी चीज में हमने देखा नहीं। तो हमें आश्चर्य होता था, क्योंकि हम पुरुषार्थी हैं, हम भी दादियों को देखकर सीखते थे, तो हमें लगता था कि हमारी तो बुद्धि जाती है। आज की दुनिया में देखो, माया की माया का पॉम्प है ना, बाबा कहता है, आज मॉल्स में जाते हैं, कितनी करोड़ों चीजें होंगी ऐसी जो मन बुद्धि को आकर्षित करने वाली होंगी। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमारी आवश्यकता नहीं है, तो हम अपना वो समय, शक्ति, धन उस तरह की शॉपिंग में, जैसे दुनिया वाले शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग को एंजॉय करते हैं और अनावश्यक चीजें ला करके अपने घर में जमा कर देते हैं, जिसको लोग परिग्रह कहते हैं, माना जमा करना भी क्या है, एक तरह का लालच है, मुझे चाहिए नहीं लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने लाके, पसंद आया मैंने लाके अपने घर में रख लिया, फिर वो चीजें बढ़ती गई, तो वो भी उस तरह का भी जो सूक्ष्म आकर्षण चीजों का, जिनमें आसक्ति जाती है, हमारी बुद्धि जाती है, वो भी हमारा नहीं होना चाहिए। और संबंधों में तो बाबा ने सर्व संबंधों का हमें अनुभव कराया है, सर्व संबंधों का अनुभव बाबा के साथ है, तो किन्हीं मनुष्य आत्माओं में हमारी बुद्धि जाएगी नहीं। अगर कोई संबंध की कमी हम बाबा से अनुभव करते हैं, फिर इच्छा होगी कि कोई तो मेरी दिल की बात सुनने वाला हो, कोई तो मुझे पूछने वाला हो, किसी से हमें प्यार मिले, प्यार की इच्छा, सम्मान की इच्छा। क्योंकि ये संबंधों में, जब हम संगठन में आते हैं, परिवार में आते हैं, और जब हमारी अपेक्षाएं होती हैं दूसरों से और वो हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो संबंधों में बाबा हमें क्या कहता है, लेने वाले नहीं बनना है, क्या बनना है, देने वाले बनना, इच्छाएं नहीं रखनी है उनसे, लेना सिर्फ बाबा से है, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा में ही सब कुछ समाया है, जो व्यक्ति वैभव है वो बाबा है, तो जो भी लेना है बाबा से लेना है, वो प्यार का सागर है, वो इतना प्यार दे रहा है। कई बार हम ज्ञान के विस्तार में बहुत चले जाते हैं ना, क्लासेस वगैरह हम बहुत सुनते हैं, लेकिन योग का चार्ट हमारा उतना अच्छा नहीं होता। जितना हमारा योग का चार्ट अच्छा होगा और जितना पावरफुल योग का अनुभव, यानी जो बाबा की लगन में हम मगन हैं, बाबा के लव में लीन स्थिति का अनुभव करना, वो जितना हमारा अधिक होगा, उतना ही कोई देहधारियों में हमारी बुद्धि नहीं जाएगी, क्योंकि मन भगवान के प्यार से भरपूर है। आप अमृत वेले जो योग करते हैं, वो पावरफुल, सहज ही हम अशरीरी स्थिति में स्थित होकर परम धाम में बाबा से वो सर्व संबंधों का रस अनुभव कर सकते हैं, जब उसमें नींद की माया नहीं होनी चाहिए। अगर सिर्फ नेमिनाथ बनकर के हम नियम निभाते हैं कि ठीक है अमृत वेला उठना है, बाबा ने कहा है, उठकर बैठे, आधा झुटका मारा, आधा योग लगाया, और लगाया भी तो फिर शांति वाला योग लगाया, शांति वाला माना आत्मा, मैं आत्मा हूँ, परम धाम में बाबा के पास हूँ, बस फिर शांति में, बिल्कुल वो नहीं। लेकिन हर संबंध का अनुभव करते हुए बाबा से उस प्यार का अनुभव करना, जैसे ही आप वो संकल्प करेंगे ना, बाबा बंधा हुआ है, क्योंकि वो वरदानी समय है, बाबा कहता है आप जो संकल्प का अनुभव करना चाहो, बाबा उस समय बच्चों के लिए हाजिर है, बाबा के सब भंडार खुले हैं, जो जितना लेना चाहे वो ले सकता है। तो संबंधों का अनुभव भी बाबा से हमें होता है। तो बाकी जो भी हमारे, चाहे ब्राह्मण परिवार के भी संबंध हैं, जैसे कहा कि जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो हमारी इच्छाएं शिफ्ट हो जाती हैं, दुनिया वालों जैसी इच्छाएं तो नहीं रहती, लेकिन दूसरे प्रकार की इच्छाएं हमारी शुरू हो जाती हैं, तो जिसमें मुख्य है नाम मान शान की इच्छाएं, कि किसी सेवा में मेरा भी नाम लिया जाए, या कहीं मुझे चांस नहीं मिलता है तो हमारा संकल्प चलता है, या हम इतनी सेवा करते हैं लेकिन फिर भी नाम तो दूसरे का हो जाता है, हम तो पीछे रह जाते हैं, ऐसे ऐसे संकल्प अगर हमें आते हैं तो बाबा कहता है कि भगवान ने आपको नाम मान शान दिया है। और एक मुरली में बाबा ने कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, बाबा ने कहा था कि मानो आप समझते हैं कि आपका नाम होना चाहिए, आपके अंदर कोई योग्यता है, कोई विशेषता है और उस अनुसार आपको कोई सेवा मिलनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिलती है। आत्मा से कोई आत्मा जो उस सेवा के निमित्त है उससे आपका हिसाब किताब है और वो आपको वो सेवा नहीं देते या जानबूझकर आपकी उपेक्षा करते हैं। तो आपको अगर चांस नहीं मिला, आपका नाम नहीं आया, आप राइट हो, वो रॉन्ग है, तो बाबा की विजय माला में आपका नाम निश्चित है। तो बाबा कहता है उसकी परवाह, उस नाम की परवाह मत करो आप। ये क्लियर बाबा के शब्द हैं, ये करीब मैं समझती हूँ 95 की मुरली है जिसमें बाबा ने ये कहा था। और फिर बाबा ने कहा था आपके नाम की माला कौन जपता है, कौन जपता है, भगत भगवान को जपते हैं, लेकिन यहाँ भगवान बच्चों के नाम की माला जपते हैं। उसे याद करो कि मेरा नाम जपने वाला कौन है, मेरा नाम लेने वाला कौन है। और भगवान ने कितना ऊंचा नाम दिया, ब्राह्मण बनाया आपको। आज की दुनिया में भी ब्राह्मणों का कितना ऊंचा स्थान है, कितना ऊंचा नाम है, कि सिर्फ ब्राह्मण नाम से ही उनकी उनकी कमाई हो जाती है, उनकी जो अपनी क्या बोलते हैं शरीर निर्वाह जो है वो उससे चलता है। तो आप तो सच्चे ब्राह्मण हो, वो तो सिर्फ नाम के ब्राह्मण है, आप तो सच्चे ब्राह्मण आत्माएं हैं। और मान की बात जहां आती है, मान की इच्छा, तो भगवान ने जो स्वमान दिया उसके आगे आत्माओं का मान क्या करेगा। क्या स्वमान दिया, इतने टाइटल दिए हैं बाबा ने हमें, और ऐसे ऐसे टाइटल दिए हैं कि दुनिया के जो VVIP भी होंगे ना उनके भी इतने टाइटल और ऐसे टाइटल नहीं है। हैं? क्या टाइटल दिए बाबा ने, मास्टर सर्वशक्तिवान है, महान आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, देवात्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ। अभी तक तो आपको सब अच्छी तरह याद हो गया होगा, 3 दिन से आप ज्ञान की अगन जलाकर बैठे हैं। हाँ, तो मेरे से ज्यादा सुना सकते हैं, बोलिए। मास्टर ज्ञान सूर्य। तो बाबा ने कहा कि मैं बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल पूज्य बनाता हूँ, और आपके चित्रों को कितना सम्मान से देखते हैं, जो जड़ चित्र हैं उनको भी इतना सम्मान देते हैं, कोई भी मंदिर के आगे से कोई निकलेगा ना तो भी उसको सिर झुका करके जाएगा। तो जब चैतन्य में रहे हैं तो इतने सम्माननीय रहे हैं, तभी जड़ चित्रों को इतना सम्मान मिलता है। तो मान प्राप्त करने की विधि है मान देना, जैसे कहा ना, जहां हम संबंधों में आ रहे हैं वहां हमें देना है, वहां हमें लेने की इच्छा नहीं करनी है, वो देना ही लेना है। अगर हम इच्छा रखते हैं तो बाबा कहता है इच्छाएं परछाई के समान है, और आप परछाई को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो परछाई पकड़ में आएगी। परछाई को काबू करने का तरीका है आप प्रकाश के सामने हो जाओ, जैसे ही आप लाइट के सामने चलने लगेंगे परछाई पीछे पीछे आने लगेगी। तो ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख हम रहेंगे, शिव बाबा के साथ हम रहेंगे, तो जो भी इस संसार की इच्छाएं हैं वो हमारी अपने आप पूरी होंगी, वो प्रकृति दासी हो जाती हैं, हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा, उसके पहले ही जो हमें चाहिए वो हमारे लिए हाजिर है। जैसे कहा इच्छा मात्रम अविद्या, यानी इच्छा हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कई बाबा के बच्चे इस बात के अनुभवी होते हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, बाबा कहता है आवश्यकताओं की भी हद होती है, आवश्यकताएं बाबा सबकी सहज पूरी करेगा, लेकिन आवश्यकता अगर हद से बाहर चली जाती है, अगर उसमें लोभ का अंश आ जाता है, तो फिर बाबा बंधा हुआ नहीं है, फिर हो सकता है कि वो लोभ, क्योंकि लोभ विकार में आ जाता है और फिर वो माया का रूप बन करके विकर्म हो जाए, उसका बोझ बने, वो अलग बात है। तो इस तरह से बाबा से अगर हम सदा लगन में हैं, सदा बाबा के साथ हैं, सदा हम योगी हैं, जितनी हमारी ये ईश्वरीय सुख की अनुभूति बढ़ती जाती है उतना ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति हम सहज अनुभव करते हैं। तो लास्ट में एक कहानी सुना करके मैं पूरा करूंगी कि एक बार एक राजा था, उसको अपना वारिस चाहिए था। तो उसने कहा कि अगर वारिस मुझे तलाशना है तो उसमें कुछ गुण होना चाहिए। तो उसने एक शर्त रखी। उसके पास एक बकरी थी, उसने कहा कि मेरी इस बकरी को जो इतना भरपेट खिला के लाएगा कि जब ये दरबार में आएगी और इसके सामने घास रखी जाएगी तो ये घास में मुंह न मारे, तो उसे ही मैं अपना वारिस घोषित करूंगा। तो कुछ लोगों ने हिम्मत की, तो एक आया और लेकर के गया, उसने सारा दिन उसको खूब खिलाया, भरपेट खिलाया जितना खिला सकता था। फिर जब शाम को लेकर के आया, उसे पक्का विश्वास था कि बकरी ने इतना खाया है सारा दिन कि अब वो बिल्कुल भी घास को देखेगी नहीं। लेकिन जैसे ही दरबार में लेके गया और हरी भरी घास वो बकरी के सामने रखी गई, ऐसे खाया उसने जैसे कि सारा दिन कुछ खाया ही नहीं। तो राजा बहुत निराश हो गया कि तुमने बकरी को कुछ खिलाया नहीं। तो उसने कहा, महाराज मैंने तो भरपेट खिलाया उसको। तो वो परीक्षा में पास नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन दूसरा लेके गया उसे, उसने भी वही किया और वो उसका भी वही हाल हुआ। तो जो तीसरे दिन लेके जाने वाला था उसने एक युक्ति सोची। वो लेके गया उसको और बकरी को घास खिलाता था वो, जैसे ही वो घास में मुंह मारने जाती उसको मुंह पे एक डंडा पड़ता था जोर से। तो हर बार जब भी वो घास में मुंह डालने जाती एक डंडा पड़ता। तो बकरी डर गई, अब उसने घास में मुंह डालना बंद कर दिया। उसको पता चला कि घास मुंह डालना माना डंडा। तो जब उसको पूरा विश्वास हो गया कि डंडे के डर से ये नहीं खाएगी, उसको दरबार में ले गया और दरबार में वही घास रखी गई उसके सामने, लेकिन वो डंडा लेके सामने खड़ा था और बकरी की भी नजर थी कि डंडा सामने है, अगर मैंने मुंह डाला तो डंडा पड़ने वाला है। तो बकरी डंडा ही देखती रही, उसने घास में मुंह नहीं डाला। तो हमारी जो मन की इच्छाओं की स्थिति है वो इस प्रकार की होती है कि इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती हैं, लेकिन कौन सा डंडा हमें लगाना है, जो बाबा ने हमें ज्ञान स्वरूप बनाया है, जो हमें प्राप्ति स्वरूप बनाया है, वो हमें अपने आप को अटेंशन और स्मृति दिलाते रहना है अपने मन को। तो जितना हम उस अनुभव में रहेंगे, जितना हम ज्ञान के अनुभव में रहेंगे, बाबा से योग से प्राप्तियों के अनुभव में रहेंगे, अपने आप हमारा मन जो है वो सांसारिक इच्छाओं से उपराम रहेगा। तो सर्व प्राप्ति संपन्न मैं हूँ, बेहद की प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा ने सर्व खजानों से हमें भरपूर बनाया है। और ये सब जो दुनिया है, बाबा कई बार कहते हैं कि ये सब तो मरे पड़े हैं, तो जो मरे पड़े हैं वो जो मुर्दे हैं वो हमें क्या देंगे, उन्हें तो हमें ही देना है। और एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर हम भक्तों की इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी इच्छाओं को समाप्त करना होगा, तभी हम दूसरों की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। जिसकी खुद की कामना होती है वो सामना नहीं कर सकता। कामना रखना भी काम विकार का अंश है, ये बाबा ने कहा था। तो हद की जो भी कामना है, एक ही सिर्फ इच्छा होनी चाहिए ब्राह्मणों की। कौन सी इच्छा होनी चाहिए? मैं बाप समान बन जाऊं। एक शुभ लोभ जिसे हम कहेंगे, जिसको रखने की बाबा ने हमें छुट्टी दी है, जो शुभ इच्छा है हमारी कि हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएं, हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएं, उसके अलावा कोई इच्छा हमारी इस संगम युग पर नहीं है। बाबा ने हमारी सब इच्छाएं पूरी कर दी, जो हम चाहते थे, जो हमने गीत में भी सुना ना, बहुत सुंदर रीति से उस गीत में ये भाव थे। ओम शांति। इच्छा मात्रम अविद्या माना, इच्छा की अविद्या हो जाए, इच्छा क्या है उसका ज्ञान ही नहीं है, उसको कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। ये संस्कृत शब्द है मात्रम, हाँ मतलब अंश मात्र भी इच्छा का भाव ही उत्पन्न ना हो, बिल्कुल ना हो। मात्रा का मतलब नहीं है, मात्रम एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब कि इच्छा की अविद्या है माना कि वो, हाँ वो अंश तक भी मतलब ज्ञान ही नहीं है कि इच्छा क्या होती है, इतना तृप्त है इतना संतुष्ट है कि इच्छा का ज्ञान ही नहीं है, नाम मात्र भी नहीं, ना अंश मात्र नाम मात्र भी ना। संतुष्ट है तो वो कहा ना कबीर दास जी ने भी कहा, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खाने, जब आवे संतोष धन सब धन तुरी समान। तो बाबा इसीलिए हमें कहता है संतुष्ट मणि बनो, संतुष्टता का गुण भी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है, संतुष्ट है तो इच्छाएं अपने आप नहीं होती हैं। सात बजे थे ना, अपने मन को देह और देह के सर्व संबंधों से न्यारा करते हुए ले चलें वतन की ओर। मैं आत्मा अव्यक्त रूप में वतन में स्वयं को बाबा के सम्मुख अनुभव कर रही हूँ। बाप दादा बहुत स्नेह से मुझ आत्मा का आह्वान कर रहे हैं। बाबा के स्नेह की दृष्टि से मैं बाबा के स्नेह में समाती जा रही हूँ। बाबा आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है, आपने मुझे तीनों कालों का ज्ञान दिया और मुझे मेरे सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाई। मैं ही अपने आदि स्वरूप में देवात्मा थी, सर्व प्राप्ति संपन्न थी, तन मन धन सर्व सुख संपन्न और संपूर्ण थे। प्रकृति भी पूर्ण सुखदायी थी। मैं आत्मा 21 जन्मों तक उस स्वर्गिक दुनिया में सुखों से भरपूर थी जहां दुख का नाम निशान भी नहीं। द्वापर युग में मेरे ही स्वरूप की पूजा मैं आत्मा करने लगी। आप सर्व भक्तों की मनोकामनाएं मेरे पूज्य स्वरूप के द्वारा पूर्ण करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। अब मुझे भी भक्तों की इच्छाएं पूरी करने में आपके साथ सहयोगी बनना है। आपने मुझे उस योग्य बनाया है। मुझे सर्व सुख शांति की प्राप्तियों से संपन्न बनाया है। ज्ञान के खजाने से संपन्न बनाया है। आपकी मनुष्य से देवता बनाने की गतमत न्यारी है और मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। आपने मुझे इस संसार से चुना और मुझे इस योगी बनाया। मुझे अपने समान दाता बना दिया है। विश्व परिवर्तन के इस कार्य में। आपने मुझे निमित्त बनाया है, मैं आत्मा समस्त विश्व की आत्माओं की पूर्वज हूँ। मुझे सबको देना है, उन्हें जिस शक्ति की आवश्यकता है, जिस गुण की आवश्यकता है, जिस सहयोग की आवश्यकता है, आशा या उत्साह की आवश्यकता है, बाबा के साथ मुझे उन आत्माओं की सेवा करनी है। बाबा ने मुझे फरिश्ता बनाया है, फरिश्ता या जो आवश्यकता अनुसार कहीं भी हाजिर हो जाए। अपनी मनसा से मैं विश्व में बाबा के साथ कहीं भी पहुंच सकती हूँ। देखें स्वयं को, मैं बाबा के साथ परम धाम में पूरे विश्व के ग्लोब पर शांति सुख और शक्तियों की किरणें फैला रही हूँ। जो भी अशांत आत्माएं हैं, उन्हें शांति का अनुभव हो। जो भी इस विश्व में दुखी है, उन्हें भी सुखदाता से सुख का रास्ता मिले। सभी विश्व की आत्माएं अपने पिता से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के अधिकारी बने। कुछ समय मन को इसी सकाश देने की स्थिति में बाबा के साथ रहें। बाबा आपकी याद मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाली है, जिसमें सब सुख समाए हैं। आपने मेरे जन्म जन्मांतर के थकान मिटा दिए हैं। मुझे सच्ची शांति और विश्राम मिला है आपकी गोद में आकर। मन बाबा की याद में, उसके लव में लीन इस स्थिति का अनुभव करे। वो प्यार का सागर है, मैं आत्मा शिव बाबा के स्नेह में लगन में मगन हूँ। निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह मुझ आत्मा के भाग्य की लकीरों को बदलने वाला है। जिसने मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया है, मैं सर्व प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हूँ। कुछ समय बाबा के स्नेह में समाये रहे, करूं मैं कैसे मुख से।
ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। Thank you.